आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
पहले भाग में हमने कहा था कि द्रौपदी के जीवन में कभी भी कुछ भी सामान्य नहीं घटा। उनके स्वयंवर की शर्तें भी बड़ी कठोर थी। उन शर्तों को पूरा करना आसान नहीं था। अर्जुन ने शर्तें जीती, सारे अनुबंध पूर्ण किए, परंतु कौरवों के साथ साथ उपस्थित अन्य राजाओं ने तब भी पांडवों को द्रौपदी को ब्याह कर ले जाने से रोकने का प्रयास किया। ऐसे में पांडवों ने भी डटकर सबका सामना किया और वे द्रौपदी को अपने साथ ले जाने में सफल रहे। जब पांडव द्रौपदी सहित वापस अपनी कुटिया पहुंचे और बाहर से ही माता को पुकार कर कहा कि माता, देखिए आज हम क्या लाए हैं, तो माता कुंती ने सदा की तरह आज भी कह दिया, जो लाए हो आपस में बांट लो। अब ये परिस्थिति भी कोई सामान्य घटना है भला? पांडव अपनी माता की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकते थे, परंतु द्रौपदी अब क्या करे? वो इस निर्णय को सहजता से स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। कठिन परीक्षा की घड़ी थी। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी को पूर्व जन्म की घटना सुनाई और सब कुछ विस्तार से समझाया। तब जाकर कहीं ये बात स्वीकार्य हुई और महाराज द्रुपद ने पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। पांच पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व बहुत ही सशक्त था। स्वयंवर में अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को माता कुंती के कहने पर पांच भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। कथा अनुसार द्रौपदी को वेद व्यास जी ने वरदान दिया कि पांचों भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य भंग नहीं होगा। उन्हीं के आशीर्वाद से द्रौपदी को प्रत्येक पांडव से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। द्रौपदी केवल सुंदर रूपवती ही नहीं थी, वे अत्यंत बुद्धिमती स्त्री भी थी। महाभारत की कथा इस बात की साक्ष्य है कि जब जहां भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई भी निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने सदा एक सहधर्मिणी का कर्तव्य निभाया। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आती हैं और दोनों आपस में बातचीत करती हैं, तब सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि सखी, आप ये रहस्य मुझे भी बताएं कि आपके पांचों पराक्रमी पति आपका इतना सम्मान कैसे और क्यों करते हैं। तब द्रौपदी उत्तर देती हैं कि तुम मेरी प्रिय सखी हो, तुम्हें मैं ये रहस्य अवश्य बताऊंगी। उनके द्वारा मेरा सम्मान किए जाने का कारण यह है कि अहंकार और क्रोध दोनों ही संबंध की मधुरता को नष्ट करते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों से ही दूर रहती हूं। अपने मन को वश में रखकर केवल पति की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करती हूं। मेरे वचन मीठे रहें इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं। पति का तिरस्कार नहीं करती, उनके संकेत का अनुसरण करती हूं। पांडवों के अतिरिक्त किसी और की ओर मेरा मन आकर्षित नहीं होता। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती। पति जिन वस्तुओं का सेवन नहीं करते, उनका मैं भी सेवन नहीं करती। श्वासुमाता ने जो धर्म बताए हैं, मैं सदा उनका पालन करती हूं। विपरीत समय में पति का हर संभव सहयोग करती हूं। ऐसी ही कुछ और भी बातें सुनकर सत्यभामा को द्रौपदी के महान चरित्र के बारे में पता चलता है। महाभारत में द्रौपदी का चित्रण एक ऐसी पत्नी के रूप में किया गया है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगा दिया जाना हो या जैद रथ द्वारा अपहरण कर लिया जाना या फिर कीचक द्वारा किया गया असभ्य आचरण। द्रौपदी का अपने पतियों पर विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वनवास काल में एक बार ऐसा हुआ कि पांचों पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर किसी विशेष कार्य से धौम्य ऋषि से मिलने उनके आश्रम गए हुए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था। संयोगवश जब वो अपने सैन्य बल के साथ पांडवों के आश्रम के सामने से निकल रहा था तो उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ गई। द्रौपदी आश्रम के बाहर अपने कार्य में व्यस्त थी। अकेली द्रौपदी को देखकर जयद्रथ वहीं रुक गया। वो द्रौपदी के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उससे जब रहा नहीं गया तो वो रथ से उतरकर द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछ बैठा कि
हे परम सुंदरी, तुम कौन हो? क्या तुम कोई दिव्य कन्या हो जो इस निर्जन वन में वास कर रही हो?
तब द्रौपदी ने जयद्रथ को अपना पूरा परिचय दिया और कहा, मैं महाराज द्रुपद की पुत्री एवं पांडवों की पत्नी हूं। पांडवों का नाम सुनकर जयद्रथ हंस पड़ा और उसने कहा,
पांडव तो अब वनवासी हो गए हैं, उनके पास बचा ही क्या है? उन निर्धनों के साथ रहकर तुम व्यर्थ ही कष्टमय जीवन की पीड़ा सह रही हो। मैं सिंधु राज जयद्रथ हूं। तुम यदि मुझसे विवाह कर लो तो महलों का सुख भोग सकती हो।
जयद्रथ की बातें सुनकर द्रौपदी उसे धिक्कारते हुए कहती हैं, राजकुल के होकर भी ऐसी ओछी बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को संभवता जानता नहीं है। जयद्रथ द्रौपदी का उत्तर सुनकर तिलमिला जाता है और कहता है,
मेरे पास इतनी विशाल सेना है कि मैं पांडवों को सदा सदा के लिए मिटा सकता हूँ। तुमने मेरे सामर्थ्य को ललकारा है। अब तो तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं। सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे आगे गिड़गड़ाने को तैयार हो जाओ।
द्रौपदी अपने विश्वास पर वही अटल रही और उन्होंने जयद्रथ से कहा, हे दुष्चरित्र, सावधान। जब एक ही रथ पर साथ बैठकर सखा श्री कृष्ण और मेरे पति अर्जुन आएंगे, जब श्री भीष्म तेरी ओर गदा लेकर दौड़ेंगे, साथ ही श्री नकुल और श्री सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब तुझे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पछतावा होगा। काम क्रोध में अंधा हो चुका जयद्रथ बड़ी भूल कर बैठता है। द्रौपदी के भरकस विरोध करने पर भी वो उन्हें घसीटता हुआ रथ में चढ़ाता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जब पांचों पांडव आश्रम लौटते हैं तो द्रौपदी को न पाकर सब के सब चिंता में उन्हें चारों ओर ढूंढने लगते हैं। तब एक वनवासिनी उन्हें बताती है कि उसने देखा है द्रौपदी को कौन हर ले गया है। तब पांडव द्रौपदी की खोज में निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही उन्हें द्रौपदी जयद्रथ के रथ में बैठी हुई दिखाई दे जाती है। उसके बाद पांडव जयद्रथ का क्या हाल करते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। जयद्रथ द्रौपदी को वहीं छोड़कर बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर भाग निकलता है। इंद्रप्रस्थ में रहते समय एक दिन भीम ने महारानी द्रौपदी के बारे में ऐसा क्या देख लिया था कि वे भय से मूर्छित हो गए थे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।